साथ यात्रा नई क्षिति की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय के क्षितिज कार्यक्रम में मैं श्री धनराज शंभु का प्यार भरा अभिवादन। श्रोताओं, विश्व हिंदी सचिवालय का यह प्रयास है कि विश्व के कोने कोने में हिंदी भाषा गूंजे और इसका विकास हो। आज यह भाषा पृथ्वी से अंतरिक्ष तक गूंज रही है। हर बार हम आपका परिचय एक विद्वान से कराते हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत है। आज हम आपका परिचय भारत के डॉक्टर श्री कृष्ण तिवारी जी से कराने जा रहे हैं, जो हिंदी के शिक्षक एवं प्रोफेसर हैं और बरसों से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे हिंदी साहित्य और भाषा के मंजे हुए विद्वान हैं, अतः अधिक न कहते हुए चलें उन्हीं के मुखारविंद से हिंदी भाषा का इतिहास, दिशा, दशा और विस्तार पर उनके विचारों को सुनते हैं। तो लीजिए, सुनिए डॉक्टर श्री कृष्ण तिवारी जी मॉरिशसीय एमबीसी के स्टूडियो में। मैं आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हम आपका अभिवादन करते हैं। कृपया हिंदी भाषा पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।
मैं डॉक्टर श्री कृष्ण तिवारी, प्रोफेसर हिंदी, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत। मेरी वार्ता का विषय है हिंदी की दिशा एवं दशा। भारतवर्ष के वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रचलित अपभ्रंश भाषा से जिन स्थानीय भाषाओं का उदय हुआ उन्हें भाषा के नाम से संबोधित किया जाता रहा है, जिसका प्रमाण हमें इस भाषा के तीन प्रसिद्ध कवि कबीरदास, तुलसीदास एवं केशवदास की कविताओं में मिलता है। इन तीनों कवियों ने अपनी काव्य भाषा को भाषा के नाम से ही संबोधित किया है। कबीरदास कहते हैं, संस्कृत कूप जल, भाषा बहता नीर। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। केशवदास कहते हैं, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भे मंद मति त्यही कुल केशवदास। उक्त राज्यों में अपभ्रंश भाषा से जो स्थानीय भाषाएं बनी और जिन्हें भाषा के नाम से संबोधित किया गया उनमें आधारभूत अंतर नहीं था। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों की बातों को बड़ी सहजता से समझ लेते थे। अतः अपभ्रंश जनित वह सभी स्थानीय भाषाएं एक भाषा समूह थी, जिसे आगे चलकर समग्र रूप में हिंदी कहा गया। हिंदी के स्थानीय रूप हिंदी की बोलियां थी। इन बोलियों का अलग से कोई नाम नहीं था। सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भारत के भाषा सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय हिंदी यानी हिंदी की बोलियों को ब्रज, अवधी, बुंदेली, बघेली, हरियाणवी आदि नामों से विभाजित कर हिंदी के अंदर विभाजन रेखा खींची। भाषा यानी हिंदी भाषा के स्थानीय रूपों में विशाल साहित्य लिखा गया है। ब्रज के आसपास के हिंदी भाषा यानी ब्रज हिंदी एवं अवध के आसपास की हिंदी भाषा यानी अवधी हिंदी ने हिंदी भाषा का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व भी किया है। राजनीतिक कारणों से आगे चलकर दिल्ली एवं मेरठ तथा उसके आसपास की स्थानीय हिंदी यानी कौरवी हिंदी को हिंदी का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इसी कौरवी हिंदी को परिष्कृत एवं परिमार्जित कर हिंदी का मानक रूप निर्धारित किया गया, जो आज हिंदी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कौरवी दिल्ली मेरठ एवं उसके आसपास स्थानीय हिंदी के रूप में ठीक उसी प्रकार आज भी प्रयुक्त हो रही है जैसे हिंदी के अन्य स्थानीय रूप अपने अपने क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रहे हैं। इस प्रकार हिंदी के दो रूप दिखाई पड़ते हैं, एक मानक हिंदी एवं दूसरा क्षेत्रीय हिंदी यानी लोक हिंदी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी मानक हिंदी एवं स्थानीय हिंदी से मिलकर बनती है। मानक हिंदी स्थानीय हिंदी के स्तंभ पर टिकी है, उसे स्थानीय हिंदी से ही स्वाभाविक जीवन शक्ति मिलती है। स्थानीय हिंदी में जहां एक ओर परंपरागत लोक साहित्य का भंडार है, वहीं दूसरी ओर उसमें आज भी साहित्य लिखा जा रहा है। लोक जीवन के स्तर पर बोलचाल में स्थानीय हिंदी यानी लोक हिंदी का ही प्रयोग होता है। संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में केवल एक रूपता के लिए शिक्षा, शासन, संचार, संपर्क एवं साहित्य रचना के स्तर पर मानक हिंदी का प्रयोग होता है। मानक हिंदी एवं लोक हिंदी में कोई टकराव नहीं है। भारत के हिंदी भाषी राज्यों में दोनों एक दूसरे के आश्रय में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें स्थानीय हिंदी यथा अवधि, ब्रज, भोजपुरी आदि के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना कर रही हैं। स्थानीय हिंदी अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतः प्रभावशाली है। वहां के लोग जब मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं तो उनकी स्थानीय हिंदी का रंग उसमें दिखाई पड़ता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र से जो श्रमिक श्रम के लिए मॉरिशस, ट्रिनिडाड, फिजी, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में ले जाए गए थे, वे अपने साथ अपनी स्थानीय हिंदी ही लेकर गए थे। जब तक हिंदी का पूर्ण मानकीकरण नहीं हो पाया था और जो कुछ मानकीकरण हुआ भी था उससे वे ना तो परिचित थे और न अभ्यस्त। मॉरिशस ले जाए गए श्रमिकों के साथ मुख्यतः स्थानीय हिंदी, भोजपुरी एवं ट्रिनिडाड तथा फिजी ले जाए गए श्रमिकों के साथ उनकी स्थानीय हिंदी अवधि गई, किंतु आगे चलकर संपर्क, शिक्षा एवं साहित्य लेखन के लिए वहां भी मानक हिंदी ही अपनाई गई। वहां के हिंदी भाषी परिवारों में बोलचाल के स्तर पर भारत की ही तरह स्थानीय हिंदी का आज भी प्रयोग हो रहा है, ऐसा सुनाई पड़ता है। कहते हैं कि मॉरिशस में मानक हिंदी एवं लोक हिंदी भोजपुरी का सह अस्तित्व विद्यमान है, जो भारत के बाहर हिंदी के लिए बड़ी सुखद स्थिति है। हिंदी सर्वसमावेशी, सरल, सहज, सुबोध एवं सुग्राह्य भाषा है। इसका मूल ढांचा संस्कृत के तद्भव शब्दों से बना है और अनेक प्रकार के बौद्धिक विषयों की अभिव्यक्त के लिए उसने संस्कृत के तत्सम शब्दों को ग्रहण किया है। यही नहीं, अपनी आवश्यकता अनुसार उसने विश्व की अनेक भाषाओं से शब्दों को अपने स्वरूप में ढालकर स्वीकार किया है। भले ही कोई भाषा भाषी हिंदी के प्रति दुर्भाव रखे, किंतु हिंदी भाषा भाषी सभी भाषाओं के प्रति सद्भाव रखते हैं। यही कारण है कि हिंदी भाषा जहां भी गई है वहां के परिवेश से उसने अपना अनुकूलन किया है। मॉरिशस एवं फिजी में आज भी हिंदी की विद्यमानता उसकी जीवन शक्ति एवं समायोजन सामर्थ्य का परिणाम है। आज भी भारतवर्ष से बाहर जाने वाली हिंदी भाषियों के साथ हिंदी भाषा विश्व के विभिन्न देशों में जाती है, किंतु उनकी आने वाली पीढ़ियां हिंदी भाषा को भुला देती हैं। परिवार के स्तर पर भी वह उसे सुरक्षित नहीं रख पाती, यह दुखद स्थिति है। यदि भारत के बाहर भारतवंशियों के बीच हिंदी कहीं पूर्णतः सुरक्षित है तो वह देश मॉरिशस है। हिंदी वर्तमान में बोलचाल, संपर्क, साहित्य, राजकाज, शिक्षा, वाणिज्य, विज्ञान, तकनीकी एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की दिशा में गति करने के में सक्षम है, किंतु इन सभी दिशाओं में गति करने का अवसर एवं समर्थन हिंदी को नहीं मिल पाया है। कारण, बोलचाल, संपर्क एवं साहित्य की दिशा में गति करने का अवसर एवं समर्थन कोई भी भाषाभाषी समूह अपनी भाषा को बहुत कुछ स्वयं दे देता है, जबकि अन्य दिशाओं में भाषा को गति शासन के सच्चे समर्थन एवं प्रयास से मिलती है। भारत में हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में एक सशक्त भाषा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भारत की 43.63% जनसंख्या की मातृभाषा है और संपूर्ण भारत की कुल 57.1% जनसंख्या हिंदी समझती है। विश्व स्तर पर हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है, अतः बोलचाल की दिशा में हिंदी को गति स्वतः प्राप्त है। जहां तक साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग की बात है तो 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी भाषा का प्रयोग साहित्य लेखन में निरंतर होता रहा है, जबकि बहुत से इतिहासकार सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का प्रारंभ 633 ईस्वी के लगभग मानते हैं। तब से आज तक हिंदी में अनेक विधाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा जा रहा है। मात्र भारत में ही हिंदी में साहित्य सृजन नहीं हो रहा है, अपितु मॉरिशस, सूरीनाम आदि देशों में भी हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य सृजित हो रहा है। विश्व स्तर पर साहित्य सृजन की दृष्टि से हिंदी एक मुख्य भाषा है। उसने कबीर, सूर, तुलसी, प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला, प्रेमचंद जैसे अनेक साहित्यकार दिए हैं, जो विश्व की किसी भी भाषा के साहित्यकारों से यदि श्रेष्ठ नहीं तो समकक्ष अवश्य है। भारत में हिंदी बहुत बड़ी जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली एवं बहुत बड़े भूभाग पर फैली हुई भाषा है। अतः संपूर्ण भारत में संपर्क के लिए इसकी उपयोगिता स्वतः सिद्ध है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु आदि राज्यों को छोड़ दें तो संपूर्ण भारत में इसके माध्यम से लोगों के मध्य बोलचाल के स्तर पर सहजता से संपर्क हो जाता है। तमिलनाडु आदि राज्यों में भी हिंदी जानने वाले हैं, लेकिन संख्या कम है। आज भारत का कोई कोना हिंदी से अछूता नहीं है। विश्व के बहुत से देशों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है, किंतु जहां तक विश्व स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्वीकार्यता की बात है, तो आज की परिस्थितियों को देखते हुए निकट वर्तमान एवं भविष्य दोनों में उसकी संभावना नहीं है। हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का स्थान प्राप्त है, किंतु बड़े किंतु परंतु के साथ। इसका परिणाम यह हुआ है कि अंग्रेजी भारत के केंद्र शासन की वास्तविक राजभाषा बन गई है। केंद्र शासन के सारे कार्य मूलतः अंग्रेजी में ही होते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य अंग्रेजी में ही होता है। राज्यों के उच्च न्यायालय में सैद्धांतिक रूप से अंग्रेजी में कामकाज की बाध्यता भले नहीं है, किंतु वहां भी सारा कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। भारत में वाणिज्यिक वैज्ञानिक संस्थानों के काम अंग्रेजी में ही होते हैं। जिन सूचनाओं का जनता से सीधा संपर्क रहता है उसे दुर्बोध हिंदी अनुवाद के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, किंतु प्रामाणिक उसका अंग्रेजी रूप ही होता है। जहां तक भारत के हिंदी भाषी राज्यों की बात है तो वहां राज्य शासन के सारे काम प्रायः हिंदी में ही होते हैं। जब भारत में हिंदी पूर्णतः शासकीय अशासकीय एवं वाणिज्यिक कामकाज की भाषा नहीं बन पाई है तो भारत के बाहर किसी देश में इसका शासकीय अशासकीय एवं वाणिज्यिक भाषा बन पाना संभव नहीं है। जहां तक शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रयोग की बात है तो आज की स्थिति में भारत में हिंदी का महत्व निरंतर घटता जा रहा है। अच्छी शिक्षण संस्थाएं अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दे रही हैं। दूसरे शब्दों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना किसी संस्था के अच्छा होने का प्रमाण हो गया है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना समाज में सम्मान एवं सफलता का सूचक बन गया है। समाज के मध्यम एवं उच्च वर्गीय परिवार अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिला रहे हैं। हिंदी माध्यम की शिक्षण संस्थाएं शासन द्वारा पोषित एवं आर्थिक रूप से अक्षम परिवार के बच्चों की शरण स्थली हैं। अंग्रेजी का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी धीरे धीरे हिंदी अंकों को लिखने पढ़ने में अक्षम होते जा रहे हैं। तकनीकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक शिक्षा तो मुख्यतः अंग्रेजी में ही दी जा रही है। भारत में हिंदी रोजगार की भाषा नहीं बन पाई है। प्रायः सभी शासकीय एवं अशासकीय नौकरियों में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की अनिवार्यता है, हिंदी के ज्ञान की नहीं। हिंदी की ऐसी स्थिति भारत के बाहर तो स्वाभाविक ही है। विश्व में हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में इसे स्थान नहीं मिल पाया है, जबकि बहुत कम जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को भी संयुक्त राष्ट्र की भाषा स्वीकार किया गया है। हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा ही नहीं, अपितु प्रत्येक देश से एक सक्षम एवं संपन्न भाषा है। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान न मिल पाना संगत नहीं है। हिंदी भाषी दूसरी भाषाओं का सम्मान करें, उन्हें सीखें, लेकिन हिंदी के प्रति आदर सम्मान एवं गौरव का बोध रखें और जहां आवश्यक हो वहां उसे समुचित स्थान दिलाने का अथक प्रयास एवं संघर्ष करें। अपने परिवार, समाज एवं दैनिक जीवन में हिंदी का पूरी निष्ठा एवं गौरव बोध के साथ प्रयोग करें। अन्यथा दूसरे देशों को छोड़ो भारत जैसे देश में भी हिंदी भाषा धीरे धीरे बोलचाल तक ही सीमित होकर अपना महत्व एवं प्रासंगिकता खो देगी। यह स्थिति हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषी दोनों के लिए अपमानजनक एवं भयावह होगी। धन्यवाद।
श्रोताओ, डॉक्टर कृष्ण तिवारी जी को उनके सार्गभित विचारों के लिए आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कम समय में विश्व में हिंदी की स्थिति पर प्रकाश डाला। हिंदी को विस्तार, बाजार की भाषा, व्यवसाय की भाषा बनाएं। ऐसी संभावनाओं के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। धनराज शंभु की ओर से नमस्कार, और आज के हमारे तकनीकी सहयोगी श्री शिव जी को आभार प्रकट करते हैं। एक और कार्यक्रम तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो